Sometimes in our life, we all have come to tight spots.
और कई बार हमारे जीवनों में हम ऐसे बहुत ही कठिन हालातों में आ जाते हैं.
Puzzled.
और बहुत ही हम विचलित हो जाते हैं, विचार नहीं हमारे पास होते.
Not knowing what to do.
और हमें नहीं पता चलता कि हमको क्या करना है.
Like we are against a blind wall.
और जैसे कि हम एक अंधे की तरह होते हैं.
Not knowing where to turn.
और हमें नहीं पता चलता कि हमको किस दिशा में आगे बढ़ना है.
But from our own experience we must have understood.
लेकिन अपने अनुभव से हमने इस चीज को जाना होगा.
If you have tasted the Lord is good in our life.
यदि हमने परमेश्वर को अपने जीवन में चक्कर जाना है कि वो भला है तो.
Even though certain time we don't understand everything concerning ourselves and what is going on around us.
और कई बार अक्सर हो सकता है कि हमारे जीवन के संबंधित, हमारे जीवन के हालात जो आसपास के, उसके संबंध में हम चीजों को नहीं समझ पाते होंगे, फिर भी.
We have always seen God is so faithful.
लेकिन फिर भी हम देख पाएंगे कि परमेश्वर कितना अधिक विश्वास योग्य है.
He would not allow us to be stranded. Without help.
वो कभी भी हमें ऐसे ही नहीं छोड़ देगा बिना मदद के.
And to the extent we have known God as our Father.
और जिस हद तक हमने परमेश्वर को एक पिता के रूप में जाना है.
To that extent, we can be firm and bold.
और उस हद तक हम बहुत ही स्थिर रहेंगे, बहुत हियाव के साथ बने रहेंगे.
We can continue to live in hope.
और हम आशा के अंदर जीवन बिताते रहेंगे.
If you read the Old Testament in the Bible, we see when we read about David.
और पुराने नियम के अंदर दाऊद के बारे में जब हम पढ़ते हैं.
David faced many crises in his life.
और दाऊद जो अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे कठिन हालातों से वो गुजरा है.
At the hands of, at the mercy of his enemies.
और जो अपने जो शत्रुओं के द्वारा.
Sometimes very difficult situation where no answer.
और बहुत बार ऐसे कठिन हालातों से गुजरा जहां कोई उत्तर नहीं आता.
But he always encouraged himself.
लेकिन हमेशा उसने अपने आप को प्रोत्साहित किया.
Reminding that God is faithful.
अपने आप को स्मरण दिलाते हुए कि परमेश्वर विश्वास योग्य है.
Irrespective of my situations, he will deliver me.
और कोई भी मेरे हालात क्यों ना हो, परमेश्वर उन सबों से मुझे छुड़ाएगा.
You know, one of the Psalm he is writing that he realized that he was in a pit.
और एक भजन में वो लिखता है कि वो अपने आप को ये महसूस करता है कि वो एक गड्ढे में पड़ा हुआ है.
It's in Psalm 40, we know.
और भजन 40 में से हम पढ़ते हैं.
It's a pit of destruction.
और वो लिखा है कि ये गड्ढा तो विनाश का गड्ढा है.
And he also thought he's in the middle of miry clay, singing in clay.
और वो ये भी कहता है कि उसे ऐसा लगता है कि वो दलदल की कीच में पड़ा हुआ है.
But even then he realized that God will bring me out of it.
लेकिन वहां पर भी वो याद करता है कि परमेश्वर उससे भी मुझको बाहर निकालेगा.
From that pit of destruction,
वो सत्यनाश के गड्ढे से,
and from singing from that miry clay,
और दलदल की कीच में से फंसने से,
God will bring me out.
और परमेश्वर उसमें से मुझे बाहर निकालेगा.
And he'll keep my footsteps on firm rock.
और वो लिखता है कि मुझे चट्टान पर वो खड़ा करेगा.
And not only that, he will give me a new song.
लेकिन इतना ही नहीं, लेकिन वो एक नया गीत मुझे देगा.
So that is how David viewed at difficult situations.
और इस प्रकार से दाऊद ने उस कठिन हालातों को देखा.
I remember another Psalm, Psalm 18, he is using an expression.
और 18 भजन संहिता में वो इस प्रकार कहता है.
He drew me out of many waters.
और वहाँ पर वो कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे जल जो गहरे थे, उसमें से प्रभु ने मुझे उबारा है.
I remember sometime when I was passing through a difficult situation in my life.
और मुझे याद आता है मेरे जीवन के अंदर जब मैं ऐसे बहुत ही कठिन हालातों से गुजर रहा था मेरे जीवन में.
I was feeling that I am drowning. I had no. My foot is not on strong and drowning.
और कई बार मुझे ऐसा लगा कि उस गहरे जल के अंदर मैं डूब रहा हूँ और मेरे पैरों को जमीन नहीं मिल रही है.
So this word came to me such an encouragement.
और ये वचन ऐसे समय में प्रोत्साहन के रूप में मेरे पास आया.
It is like God stretching his hand, drew us out of the water.
और परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाकर उस पानी से मुझे उबार रहा है.
So this is what we should believe, and that is the truth.
और इस बात पर हमको विश्वास करना, और ये सत्य है.
If you taste God as a Father,
यदि आप परमेश्वर को पिता के रूप में चक्कर जानोगे,
and to the extent we put our confidence and our faith in Him,
और जिस हद तक परमेश्वर पर विश्वास और उस हियाव को आप रखेंगे,
we all can experience that in our life.
ये सब कुछ हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं फिर.
God is always on our side in our battles.
और इन युद्धों में परमेश्वर हमेशा हमारी ओर है.
He will not be just a silent observer of what is happening in our life.
और वो केवल इतना ही नहीं कि शांत रहकर हमारे जीवन में जो हो रहा है उसको वो देखता रहे, उतना ही नहीं.
In Isaiah chapter 40 there is a powerful encouragement.
और यशायाह 40 के अंदर इस प्रकार लिखा हुआ है.
He is saying that God is telling to Israel.
और परमेश्वर जो इसराइल से इस प्रकार कहता है.
When you pass through the waters.
और यशायाह 43 के अंदर
आई विल बी विथ यू,
जब तू जल से होकर जाएगा तब मैं तेरे साथ होऊंगा।
यशायाह 43:1-2
यशायाह 43 और वचन 2।
एंड व्हेन यू आर पासिंग थ्रू रिवर्स दे विल नॉट ओवरफ्लो यू,
और जब तू नदियों में होकर चलेगा तब वे तुझे डुबा ना सकेंगे।
एंड नॉट ओनली दैट, व्हेन यू वॉक थ्रू द फायर,
और जब तू आग में से चलेगा
यू विल नॉट बी स्कॉर्च्ड,
और तब तुझे कोई आंच न लगेगी।
नॉर विल द फ्लेम बर्न यू,
और उसकी लौ तुझे जला न सकेगी।
सो मीनिंग इज गॉड इज टेकिंग द ओनरशिप ऑफ आवर लाइफ,
इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमारे जीवन का जो मालिक है वो बता रहा है।
ही इज विलिंग टू टेक responsibility of all that is happening in our life.
और जो सारी चीजें हमारे जीवन में हो रही है परमेश्वर उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है।
God's all promises are with a condition.
और परमेश्वर के हर एक वायदे एक शर्त के साथ होते हैं।
Most one of the simple condition is our willingness to love him, to serve him.
और उसमें से एक बहुत सामान्य शर्त जो है हमारी इच्छा जो परमेश्वर से प्रेम करने की, उसकी सेवा करने की।
And also prompted by his love or desire to obey his commandments.
और उसकी आज्ञा उसके प्रेम के कारण हम उसके प्रेरित होकर उसके आज्ञाओं का पालन करें।
And that is only condition.
और यही एक शर्त है।
We read in we know this promise in 1 Corinthians chapter 10:13, very familiar, we often quote it.
पहला कुरिन्थियों 10:13 के अंदर हम इस वचन को देखते हैं।
That God will not allow a temptation or a trial in our life.
और परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी कोई परीक्षा या कठिनाई हालातों का अनुमति नहीं देगा।
Beyond what we are able to bear.
और जो हमारे सहने से बाहर हो।
God understands the capacity of each one of us.
और परमेश्वर हम सबों की क्षमता को समझता है।
So this is a powerful promise that we should keep to heart.
और ये एक ऐसा प्रभु की प्रतिज्ञा है जो हमारे हृदय में हमको रखना है।
He will never allow us to be tempted beyond what we are able to bear.
और परमेश्वर कभी भी हमारे सहने से बाहर हमें परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा।
Some of us are not tested for prolonged period intensely. That is a mark that God considers strong people, strong children.
और कई बार परमेश्वर कई लोगों को बहुत ही लंबे समय तक परीक्षा में पड़े रहने देता है। इसका मतलब ये चिन्ह है कि परमेश्वर आपको उसके मजबूत और ताकतवर ऐसे बच्चे गिनता है।
He senses our ability to withstand.
और वो हमारी जो योग्यता है उसके ऊपर भरोसा करता है।
But he will never allow us to be tempted beyond what each one of us are able to bear.
लेकिन हम में से जितना लोग सह सकते हैं उससे बाहर कभी भी वो परीक्षा में हमको पढ़ने नहीं देगा।
And also with every testing there is a way of escape.
और हर एक परीक्षा के साथ वो हमको निकास भी करेगा।
That is something we should always remember.
और ये हमेशा हमको याद रखना है।
We have Jesus offered this invitation.
और परमेश्वर ने ये आमंत्रण दिया है।
Come to me, all who are weary and heavy laden.
बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ।
And I will give you rest.
और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
That is Matthew 11:28-30.
और मत्ती 11:28 में लिखा है।
This is a beautiful promise.
ये बहुत एक सुंदर वायदा है।
When we think that we are weary and heavy laden.
और जब हमें लगता है कि बहुत थक चुके, बहुत ही बोझ से दब चुके हैं।
No, some of we must have seen that. Literally we have experienced such a time in our life.
और कई बार हमें से कितने लोगों ने बहुत ही वास्तविकता में इसको महसूस किया है।
We are weary and we are heavy laden.
और हम बहुत ही बोझ से दब जाते हैं।
And Jesus is promising that I will give you rest.
और यीशु ने वायदा दिया है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
The condition is we should be willing to take his yoke.
और ये शर्त है कि हमें उसके जुए जो है वो लेने के लिए तैयार होना है।
We should be willing to learn from him.
और उससे हमको सीखने के लिए तैयार होना
है। But he also said my yoke is easy.
वो कहता है मेरा जुआ सहज है।
And my burden is light.
और मेरा जो जो जो, जो मेरा जो बोझ है वो बहुत ही आसान है।
The yoke of Jesus is something we can easily take.
और यीशु मसीह का जुआ जो है बहुत आसानी से ले सकते हैं।
So may God really help us to increasingly find rest in our life.
और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम और बढ़ोतरी के साथ परमेश्वर के विश्राम को हमारे जीवन में अनुभव कर सके।
Always remembering that invitation which is available to each one of us.
और हमेशा यीशु मसीह का आमंत्रण जो हम में से हर एक के लिए उसको स्मरण करते रहे।
When we come to 2 Corinthians.
और दूसरे कुरिन्थी में जब हम जाते हैं।
We can see God Paul when he's speaking to the Corinthian believers.
और जो पौलुस यहाँ पर है कुरिन्थियों के विश्वासियों से बात करता है।
He just speaking from his heart.
वो अपने हृदय से उनके साथ बात कर रहा है।
He is sharing some of his personal life experiences with the Corinthian believers.
और कुरिन्थियों के विश्वासियों के साथ अपने जीवन के कुछ व्यक्तिगत अनुभवों को बता रहा है।
He was not trying to hide anything.
वो कुछ भी उनसे छिपा नहीं रहा है।
He is trying to express in an unreserved way some of his struggles
aur apne jo jo uski jo sangharsh hai apne uski kathin halaton ko bina chhipaye wo unko bata raha hai
and in the midst of that how god comforted him
aur in sari cheezon ke beech mein kaise parmeshwar ne usko protsahit kiya hai
so when someone is telling something from from his own experience that will help us
aur jab koi apne anubhavon se jab batata hai wo hame usse hame sahayata milti hai
so paul was able to talk about god
aur yahan pe paulus parmeshwar ke bare mein baat kar saka
the father of mercies and god of all comfort
aur yahan pe likha hai ki daya ka pita aur sab prakar ki shanti ka parmeshwar
so that is how paul understood god
aur is prakar paulus ne parmeshwar ko samjha
a god of comfort
aur wo hai daya ka pita parmeshwar
this is how we all should go should learn god
aur isi prakar humko parmeshwar ko seekhna hai
and that is a very foundational thing
aur ye bahut hi neev ki cheeze hain
so to the extent we know god as a god of comfort that will bring us rest
aur jitni had tak hum parmeshwar ko ek daya ka pita ka roop mein janenge utne hi had tak hum parmeshwar ke vishram ko prapt kar payenge
and he said that he comforts us in all our affliction
aur wo kehta hai hamare sare kleshon mein wo humko shanti deta hai
and he also said a reason
aur uske karan wo karan bhi batata hai
when in our affliction god comforts us
जब हमारे संघर्ष और तकलीफ में परमेश्वर हमको शांति देता है
and when we receive that comfort directly from God,
और जब हम परमेश्वर से उस शांति को पूरी तरह से उसके उससे ही प्राप्त करते हैं
with that comfort we can also comfort others
aur us shanti ke sath hum auron ko bhi shanti de sakte hain
those who are passing through similar difficulties
aur waise hi jo log anek sankaton se guzar rahe ho
so that is why christian life is always connected with our lives
aur masihi jeevan jo hamare jeevanon se sambandhit usse juda hua hai
it is not just a theory
aur ye keval ek theory nahi hai
it is not just learning a doctrine
aur ye ek koi siddhant seekhne ke bare mein nahi hai
and very often god people whom god intends to use and as a way of help to others
और कई बार परमेश्वर ने उन लोगों को जो बहुत ही अद्भुत रीति से औरों की मदद के लिए इस्तेमाल किया
God will allow them to pass through difficult situations
और परमेश्वर ने अनुमति दी कि उन लोगों को उस कठिन हालातों से वो गुजरे
and give them opportunity to receive the comfort coming from God
और उनको अनुमति दी ये मौके दे कि वो परमेश्वर से आने वाली शांति को प्राप्त कर
and
सके
with that comfort they can comfort others
और उस शांति से जो परमेश्वर से मिली उसी शांति से औरों को शांति दे सके
so when God is giving us some training we should not shy away from that
और यदि परमेश्वर हमें कोई ट्रेनिंग दे रहा है तो उससे हमको शर्माना नहीं है
One of the purpose is to train us to make sure that we learn to receive comfort really from God and with that comfort we can comfort
aur ek maqsad us training ka ye bhi hai ki parmeshwar se us shanti ko us halaat mein prapt karke baad mein hum auron ko shanti de sake
so little ahead of that chapter 1 he is saying
aur uske aage wo batata hai
he is saying that I don't want you to be unaware brethren
और ये वो कहता है 8 वचन के अंदर ही भाइयों हम नहीं चाहते कि तुम इससे अनजान रहो
अबाउट ऑल द अफ्लिक्शन दैट आई हैड टू अंडरगो
और जो सारे क्लेशों से मुझे गुजरना पड़ा उससे तुम अनजान न रहो
एंड ही इज सेइंग यू सी एन एक्सप्लेन वी वर बर्डनड एक्सेसिवली
और वहां पे लिखा है वो इतने ज्यादा अधिक बोझ से दब गए थे
एंड ही सेड इट इज इन अ वे बियॉन्ड माय स्ट्रेंथ
और वो कहता है कि हमारे बल हमारे सामर्थ्य से बाहर था
मीनिंग ही वाज टेस्ट ही वाज बर्डनड बियॉन्ड हिज नेचुरल एबिलिटी
और उसकी वास्तविक जो योग्यता है उससे बढ़कर वो बोझ उसके ऊपर था
एंड ही वाज फेस टू फेस विद द डेथ
और वो कहता है कि मृत्यु के साथ वो सामना करता है
So even in that situation, he learned to receive comfort.
और उस हालातों के बीच में भी उसने परमेश्वर से उस सांत्वना को प्राप्त करना सीखा.
Even in situations like he thinking that is beyond my ability, I was burdened beyond excessively and beyond my strength.
और जैसे वो कहता है कि उसकी परिस्थितियां जो थी वो बहुत ही बोझ से था उसके सामर्थ्य और बल से बाहर थी वो.
He was calm and he put his confidence in life.
लेकिन फिर भी वो शांत था लेकिन फिर भी अपना भरोसा परमेश्वर पर उसने रखा
God delivered him.
और परमेश्वर ने उसको छुटकारा दिया
And he said he will still deliver me.
और वो कहता है फिर भी आगे भी परमेश्वर मुझे छुटकारा देगा
there is an interesting an expression written in 2 Corinthians chapter 4
और दूसरा कुरिन्थी 4 में ऐसा लिखा हुआ है
in verse 8 and 9
8 और 9 वचन में
he is saying that we were afflicted in every way
हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं
बट नॉट क्रश्ड
पर संकट में नहीं पड़ते
Perplexed but not despairing.
निरुपाय तो होते पर निराश नहीं होते.
Persecuted but not forsaken.
सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते.
Struck down but not destroyed.
गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते.
So he was facing a chain of difficult situations.
और यहाँ पे देखते एक के बाद एक जंजीरों के जैसे बहुत ऐसे कठिन हालातों से गुजर रहा है.
Not as just a single one.
और एक ही नहीं.
A number of difficult situations.
ऐसे बहुत सारे कठिन हालातों से वो जा रहा है.
Not on one side, from every front of his life.
और एक ही दिशा से नहीं, लेकिन जीवन के हर दिशा से वो इसका सामना कर रहा है.
And that all simultaneously.
और एक साथ में वो भी.
But still he said that.
लेकिन फिर भी वो कह रहा है.
I was afflicted in every way.
वो कह रहा है कि चारों तरह से हम क्लेश को भोगते हैं.
But I was not crushed.
लेकिन हम उसमें नाश नहीं होते हैं.
Suddenly when I read this picture and come to my mind.
और जब मैं इसको पढ़ता हूँ, ये चित्र मेरे सामने आता है.
Of a picture of a rod roller.
जैसे कि हमें एक बड़ा रोड रोलर होता है जैसे.
No, sometimes people who play tricks, they have seen a rod. We have seen, I don't know whether tricks or real rod roller running over a man.
और जैसे वो ट्रिक्स कभी जादू करते हैं कि एक व्यक्ति के ऊपर से वो रोलर गुजर जाता है.
And still nothing happens. He get up and walk away.
और उसको कुछ भी नहीं होता, उठकर चलने लगता है.
So it is something like that. Physically such an intense pressure, but still still I am not crushed.
और जैसे कि इस चित्र के अनुसार बहुत सारे ऐसे दबाव से उसके बोझ से वो है वो गुजर रहा है, लेकिन फिर भी वो उसके नीचे दबता नहीं है.
So that is how God is looking us at us.
और उसी प्रकार परमेश्वर हमारी ओर देखता है.
Intense pressure and difficult situations God allows in our life.
और बहुत सारे ऐसे दबाव और कठिन हालातों को परमेश्वर हमारे जीवन में आने की अनुमति देता है.
He invariably provides grace and His own strength.
और परमेश्वर उन सब के मध्य में उसका अनुग्रह और उसकी जो सामर्थ्य वो हमें प्रदान करता है.
And He will ensure that we are not crushed.
और वो ये ध्यान रखता है कि हम उसके नीचे दब न जाएं.
And it's good to remember that it is not plan, God's plan for our life to get crushed under difficulties.
और ये परमेश्वर की योजना नहीं है कि हम उस कठिन हालातों के नीचे उसके दबाव में दब जाएं.
Even when we encounter a difficult situation in our life, we will not allow ourselves, yield ourselves to be crushed under those.
और कई बार हम अपने हालातों का सामना कर सकते, लेकिन अपने आप को हमें सौंपना नहीं कि उन परिस्थितियों के नीचे हम दब जाएं.
That is not God's plan for us.
और ये परमेश्वर की योजना हमारे लिए नहीं है.
God wants to see come out victorious through the difficult situations.
और परमेश्वर चाहता है कि उन हालातों से हम जयी होकर बाहर निकले.
Paul is also telling in 2 Corinthians chapter 4.
और दूसरे कुरिन्थियों 4 अध्याय में पॉलुस इस प्रकार भी कहता है.
16 to 18.
और 16 से 18 के बीच में.
Therefore we do not lose heart.
इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते.
This is something which we should again remind our. I am not going to lose heart.
और ये बार-बार हमें अपने आप को स्मरण दिलाना है कि मैं अब हियाव नहीं छोड़ूंगा.
I am not going to be discouraged.
और मैं निराश नहीं होऊंगा.
He was facing problems.
और वो तकलीफों का सामना कर रहा है.
So he was saying that my outer man is decaying.
वो कह रहा है हमारा बाहरी मनुष्य तो नाश होता जाता है.
But my inner man is being renewed day by day.
पर हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है.
So even in the sight of others, we can see externally we are undergoing such a trouble.
और हम देख सकते कि बाहरी रूप में लोगों के सामने शायद बहुत कठिन हालातों से हम गुजर रहे होंगे.
Our outer man is decaying.
और बाहरी मनुष्य तो हमारा नाश होते जाता होगा.
But God's desire is that our inner man is renewed. Day by day.
लेकिन परमेश्वर की ये इच्छा है कि हमारा भीतरी मनुष्य तो दिन प्रतिदिन नया होते जाए.
There is an opportunity for an inner renewal.
और ये एक मौका है कि हमारा भीतरी जीवन में हम नए बनने के लिए.
And he is saying that momentary affliction is producing for us an eternal weight of glory.
और क्योंकि हमारा पल भर हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है.
He is not able to express that glory.
और वो कहता है कि इस महिमा को वो व्यक्त नहीं कर पकता.
It is beyond comparison.
और ये किसी भी तुलना से बढ़कर है.
I just want to read one verse from 2 Corinthians chapter 7.
और दूसरा कुरिन्थी 7 अध्याय से एक वचन को पढ़ना चाहता
हूँ. That is 4 to 6.
4 to 6.
It's like this.
और इस प्रकार है.
I am filled with a comfort.
मैं हियाव के साथ बात करता हूँ.
I am overflowing with joy in our affliction.
और मुझे तुम पर घमंड है, शांति से भर गया हूँ सारे क्लेशों में.
For even when we came into Macedonia, our flesh had no rest.
क्योंकि जब हम मकदूनिया में आए तब भी हमारे शरीरों को चैन नहीं था.
We were afflicted on every side.
चारों ओर से क्लेश पाते हैं.
Conflicts outside.
और बाहर लड़ाइयां थी.
Fears inside.
भीतर भयंकर बातें थी.
But God who comforts the depressed.
तो भी दिनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने हमको शांति दी.
Comforted us by the coming of Titus.
और टाइटस तीतुस के आने से हमको शांति दी.
This is a good passage to read and meditate.
और ये बहुत अच्छा वचन का भाग है इस पर पढ़कर मनन करने के लिए.
Even in situation where we are, you know, where you are downcast.
और यहाँ तक के ऐसे हालातों में जो पूरी तरह से वो नीचे गिरे हुए थे.
And he is able to say, God who encourages and comforts the downcast.
और जैसे वो परमेश्वर के लिए कहता है कि ऐसे हालातों में भी परमेश्वर प्रोत्साहन देकर उठाने वाला है.
In one version, it says that God who comforts the depressed.
और दूसरे अनुवाद में लिखा है कि परमेश्वर जो निराशा में पड़े हैं उसको सांत्वना देता है.
So even situation where we felt that we are at the end of our ability.
और कई बार ऐसे हालात हो सकते हैं कि हमें लगेगा कि हमारी योग्यता के अंत भाग में आ चुके हैं.
When we think that we are cornered.
और हमें लगेगा कि हम कोने में डाल दिए गए हैं.
When we think that we are not finding a way out in this situation.
और हमें लगेगा इस परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा.
So we should remember still God our Father.
और तब हमें परमेश्वर पिता को याद करना है.
He is the one who comforts the depressed.
और वो ही है जो निराश हुए व्यक्ति को प्रोत्साहित करता है.
He is the one who comforts the downcast.
और जो पूरी तरह से नीचे गिर चुके उनको प्रोत्साहित करता है.
Have you experienced a time in our life we feel downcast?
और कई बार क्या आपने ऐसा महसूस किया अपने जीवन में जब हम गिरे हुए महसूस करते हैं?
Remember at that such a season in our life.
और ऐसे ऋतु के अंदर अपने जीवन में इस बात को याद रखें.
God is the one who comforts the downcast.
और परमेश्वर जो नीचे गिरे हुए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता है.
In such situation, Paul could say that I am filled with the comfort.
और ऐसे हालातों में भी पौलुस कह सकता है कि मैं परमेश्वर की शांति से पूरी तरह से भरा हुआ हूँ.
And there was a reason.
और उसके लिए कारण है.
God works in our life in manifold ways.
और परमेश्वर हमारे जीवन में विविध तरीकों से कार्य करता है.
The one way God comforted in that Titus spot is by the arrival of Titus.
और एक रीति से जो परमेश्वर उसके जीवन में प्रोत्साहन लेकर आता है तीतुस को ले आकर.
A very young brother.
और एक बहुत ही जवान भाई को लेकर आता
है. This young brother could, you know, give comfort to the heart of such a great apostle Paul.
और ये जवान भाई तीतुस जो है वो एक बड़ा प्रेरित जो पौलुस है उसको प्रोत्साहित कर पाता है.
So let there be many Titus in our midst.
और हमारे बीच में एक से ज्यादा टाइटस हो.
Who have a heart to comfort others.
और ताकि औरों को वो सांत्वना या प्रोत्साहन देने वाले ठहरे.
Their devotion, their life, their conduct, that was good enough. Their sight of Titus brought comfort to the heart of Paul.
और उनका समर्पण उनका जीवन पूरी तरह से इस प्रकार हो ताकि वो औरों को प्रोत्साहित कर सके.
So we can all have our life just
और हमें शब्द बोलने की जरूरत तक नहीं लेकिन हमारे जीवन की उपस्थिति ही मात्र लोगों को प्रोत्साहित करनी चाहिए.
Paul maybe might have seen the sincerity of Titus.
पौलुस ने शायद तीतुस की सिंसियरिटी को देखा होगा.
He probably has seen his commitment.
और उसके समर्पण को तीतुस के देखा होगा.
His passion and his desire.
और उसके पैशन को उसकी इच्छाओं को देखा होगा.
His zeal to love God.
और उसकी जो धुन है परमेश्वर से प्रेम करने को उसको देखा होगा.
Just sight of that young brother and sight of his thought of his life that brought such a comfort to the life.
और उस भाई को देखने से उसके विचार मात्र से पौलुस के मन में इतने प्रोत्साहन लेकर आया.
So it should be our desire to comfort others.
और यही हमारे जीवन की इच्छा होनी चाहिए कि हम औरों को प्रोत्साहित करें.
And Bible in Proverbs there is a verse like this.
और नीति वचन में इस प्रकार एक वचन है.
Those who refresh others, they themselves will be refreshed.
और औरों को जो प्रोत्साहित करते हुए आप खुद भी प्रोत्साहित किए जाएंगे.
That's a part of Christian life.
और ये मसीह जीवन का एक भाग है.
We all can refresh or cool the life of others, comfort the lives of others.
हम औरों के जीवन को और भी प्रोत्साहित कर सकते हैं, उनको तरोताजगी से भर सकते हैं.
In the time of our own need, it comes back to us.
और जब हमारे जीवन में जरूरत होगी तो वो वापस हमारे तरफ भी लौटेगा.
When we seek to refresh others, comfort others.
और जब हम औरों को ताजगी या प्रोत्साहन देने के लिए देखते हैं,
we ourselves will be comforted.
तब हम भी प्रोत्साहित किए जाएंगे.
So in conclusion, dear brothers and sisters,
और उस अंत में प्रिय भाई और बहनों,
I want to encourage every one of you.
मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ.
Don't give up in our battles.
और अपने उस युद्ध के अंदर हियाव न छोड़े.
Don't give up in our struggles.
और अपने जो संघर्षों के अंदर हार न माने.
Even if you think that we are puzzled and no answer.
और ऐसी हालात जहां पर आप फंसे हुए कोई उत्तर नहीं आता फिर भी.
Somebody is asking you a question, you think you are a believer, you think you are swarga, why all this happened in your life?
कोई आपको पूछ सकता है आप तो इतने सालों से विश्वासी क्यों, इतने सालों से आपके जीवन में ऐसी हालात है.
We have no answer, we have to close our eyes, we have no option.
और हमारे पास कोई उत्तर नहीं, हम अपनी आंखें बंद करके हमारे पास कोई नहीं, कुछ नहीं है.
God can allow us to pass through such situations.
परमेश्वर अनुमति दे सकता है ऐसे हालातों से गुजरने के लिए.
But remember, it is all for a time.
लेकिन याद रखें ये एक समय एक सीमा है जिस उसमें होगा.
Season.
और ये एक ऋतु के लिए ही होगा.
I just want to read a verse and close.
और एक वचन को पढ़कर मैं बंद करना चाहता हूँ.
1 Peter chapter 5:10.
पहला पत्रस 5:10.
May the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ Jesus, after you have suffered a while. perfect, establish, strengthen and settle you.
तब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा.
So I have personally observed this very often in the scripture, wherever this affliction, trials, tribulations, everything written.
और जब मैंने व्यक्तिगत रूप से इस चीज को देखा, जहां कहीं वचन के अंदर संकट या क्लेश या ऐसी तकलीफों का वर्णन किया गया है,
this expression is written,
और ये अभिव्यक्ति वहां लिखी गई है,
indicating that it is for a short time.
और वहां पे ऐसा लिखा, ये कुछ छोटे समय के लिए ही है.
It is just for a while.
और ये थोड़े समय के लिए ही है.
It is for a season.
और ये एक ऋतु के लिए ही है.
Even here we read that.
और यहाँ पर भी मुसी को पढ़ते हैं.
After you have suffered for a while.
वहाँ लिखा है तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद.
Then God used that lead us to perfect us, establish us, strengthen us and settle us.
और परमेश्वर उसको इस्तेमाल करेगा ताकि आपको सिद्ध करे, स्थिर करे और बलवंत करे.
May God help us to find comfort genuinely from God in our own life situations.
और ऐसे जीवन की परिस्थितियों के अंदर परमेश्वर सच में हमें अनुग्रह दे कि हम उस शांति को उससे प्राप्त कर सके.
And with that comfort we have received, seek to comfort others.
और उस प्रोत्साहन जो परमेश्वर से प्राप्त करके हम औरों को भी प्रोत्साहित कर सके.
It was very encouraging to listen to the message today.
और बहुत उत्साहित की बात था जब हमने आज का वचन सुना.
This verse that was taken 2 Corinthians 4.
और जो वचन लिया गया था दूसरा कुरिन्थियों का 4 का
8th verse.
उसका 8.
It says in the middle of that it says we are perplexed.
और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्लेश भोगते हैं.
So it explains after that in the Living Bible, it explains because we don't know why things happen as they do.
क्योंकि हम नहीं जानते कि क्यों ऐसा चीज होता है और जैसा चल रहा है.
Sometimes some things happen, we don't know why it's happening.
कभी-कभी कुछ चीजें होते हैं, हमें पता नहीं चलता कि क्यों ऐसा हो रहा है.
We on our part have done everything, but still there is something that is too much of that God allows in our lives, that pressing.
और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत दबाव परमेश्वर सम्मति देता है होने के लिए.
सो दैट परप्लेक्सिटी इज समथिंग दैट समटाइम्स वी डोंट अंडरस्टैंड.
और वो जो क्लेश के बारे में इतना 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 एक दबाव आता है कि जिसके बारे में हम समझ नहीं पाते.
बट व्हेन वी लुक एट जीसस,
जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं,
वी नो दैट व्हेन ही वाज ऑन द क्रॉस ही सेड माय गॉड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी.
और जब वो क्रूस के ऊपर था तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, क्यों मुझे त्याग दिए हो.
मींस जीसस वाज सो मच दिस ट्रबल दैट सो मच ही वाज प्रेस दैट ही कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट ही सेइंग एंड ही जस्ट सेड दैट आई डोंट नो व्हाई यू आर फॉरसेकन मी.
और प्रभु यीशु मसीह इतना दब गया था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था और इसलिए उसने पिता से कहा कि क्यों तुमने मुझे छोड़ दिया है पिता.
बट ही डिडंट, इट वाज नॉट अ क्राय ऑफ अनबिलीफ, इट वाज अ क्राय ऑफ फेथ.
और ये एक अविश्वास का एक रोना नहीं था, वो एक विश्वास से वो रो रहा था.
He must have, God must have left him for a time, but there is a time when he will receive him again.
और कुछ समय के लिए पिता ने उसे छोड़ दिया, लेकिन एक समय आने वाला था जब वो उसे उठाने भी वाला था.
That faith beyond the trouble, beyond the difficult situation is what we need in our lives.
और वो एक ऐसा विश्वास जो हमें चाहिए कि उस परिस्थिति को सामना करने के लिए जो उसके बाहर है.
That afterwards, after some time, God will again, as we said, that we heard that suffered a little while. After some time, He will again receive us.
और कुछ समय के लिए वो क्लेश होगा, लेकिन उसके बाद वो हमें वो शांति देगा, वो हमें वो आराम देगा.
When in Psalms 18,
भजन संहिता 18 में,
here actually the psalm is written when David had David was delivered by the Lord from the hand of his enemies.
और ये उस समय लिखा गया था जब शत्रु से परमेश्वर ने उसे छुड़ाया था.
It says like he was so much in trouble. He says in fifth verse that the cords of Sheol surrounded me, the snares of death confronted me.
और यहाँ पे 5 में लिखा है कि पाताल के यहाँ पे पाताल के जो लोग हैं जो चारों ओर मुझे घेर लिया था.
In my distress I called upon the Lord.
और यहाँ पे ऐसा लिखा है कि मेरे मृत्यु के समय मैंने परमेश्वर के ओर पुकारा, मेरे उदास के समय में मैंने परमेश्वर को पुकारा.
And cried to my God for help.
और मैंने उस परमेश्वर को पुकारा जो सहायता के लिए.
And then we read below so many things that what God did for him, what God is like, what God did.
और आगे में हम पढ़ते हैं कि क्या परमेश्वर ने किया है और परमेश्वर कैसा है.
सो मेनी थिंग्स आर रिटन लाइक लाइक देन इन लेटर इन द एंड इट सेज 19 ही ब्रॉट मी फोर्थ आल्सो इनटू अ ब्रॉड प्लेस.
और हम देखते हैं कि 19 में वो मुझे एक एक चौड़ाई जगह पे स्थान पे मुझे लाके खड़ा करता है, पहुंचाता है.
सो समटाइम्स गॉड अलाउज दीज डिफिकल्टीज एंड दीज स्ट्रगल्स इन आवर लाइव्स to know to so that we will know who God is.
और कभी कभी परमेश्वर अनुमति देता है उस क्लेश को उस परेशानियों को आने के लिए जिससे हमें पता चले कि परमेश्वर कौन है.
The knowledge of God is what God wants to give us. A revelation of God, so great He is. That's what He wants us to know.
और परमेश्वर का जो ज्ञान और परमेश्वर कौन है उस चीज का बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर वो दिखाना चाहता है और पहचान कराना चाहता है.
In the last days of Job. In the later after all the sufferings, he really came to know, really closely he came to know God.
और आयुब के जीवन में भी हम देखते हैं कि आखिरी दिनों में वो सचमुच में परमेश्वर को अच्छी तरीके से जाना और उसके निकट आया.
So that's the reason, one of the main reasons why God allows difficulties and sufferings in our life.
और ये एक मुख्य कारण है जहाँ पे परमेश्वर उस क्लेश और उस दुख को अनुमति देता है आने के लिए.
So we know God much better than what we knew Him before the sufferings.
और ताकि हम परमेश्वर को और अच्छाई से जाने उस क्लेश से भी बढ़कर.
एंड देन व्हेन वी सी अदर समवन एल्स गोइंग थ्रू दैट वी नो यस आई हैव गॉन थ्रू इट आई नो हाउ एंड आई कैन एनकरेज दैट पर्सन.
और जब और कोई भाई उस दुख या तकलीफ या क्लेश से गुजरता है तो मैं उसको उत्साहित कर सकता हूं और बता सकता हूं क्योंकि मैं उसके द्वारा गुजर चुका था.
आई कैन आई माइसेल्फ आई एम कंफर्टेड. आई नो दैट गॉड इज बियॉन्ड ऑल दिस. ही कैन हेल्प मी and I can encourage someone else and can be a comfort to someone else.
और परमेश्वर ने मेरी सहायता किया है और मुझे उस क्लेश में मुझे सिखाया है और मैं दूसरे को भी मैं उत्साहित कर सकता हूँ और मैं सहायता कर सकता हूँ.
So sometimes when we go through it, we don't know why so many things are questions are there, but help Lord, we can ask God, Lord help me to have faith that beyond this God is able to lift me up.
और जब हम इससे गुजरते हैं, इस क्लेश से गुजरते हैं, काफी कुछ सवालें उठ जाती है कि क्यों आ रहा है, लेकिन परमेश्वर से हम मांग सकते हैं, सहायता मांग सकता है कि इससे उबर के मैं बाहर आऊं.
एंड व्हेन वी आफ्टर एवरीथिंग इज ओवर वी विल थैंक गॉड फॉर दैट व्हाट हैज हैपेंड. आई बिकम सो स्ट्रांग इन द लॉर्ड.
और जब सब कुछ खत्म हो जाता है मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता हूँ और मैं परमेश्वर में उबल पाता हूँ.
मे गॉड हेल्प.
परमेश्वर हमारी सहायता करें.
We make a lot of plans in our life.
हम बहुत सा योजना हमारे जीवन में हम बनाते हैं.
And we always want it to go well.
और हम यही चाहते हैं कि वो अच्छी तरीके से जाए.
No, none of us would want any trials or difficulties in our life.
और हम कोई नहीं चाहते हैं कि कुछ दुख या क्लेश हमारे जीवन में आए.
We get impatient sometimes when we come across a situation which is too much, a lot of troublesome.
कभी कभी उस शांति को हम खो लेते हैं जब हम ऐसे एक परिस्थिति की सामना करते हैं, उस क्लेश के सामना करते हैं.
सो गॉड अलाउज ट्रायल्स इन आवर लाइफ, डिफिकल्टीज इन आवर लाइफ विद अ पर्पस.
और परमेश्वर जो है उस क्लेश को और उस तकलीफ को आने के लिए सम्मति देता है.
नाउ वी ऑल नो द स्टोरी ऑफ जोसेफ.
हम सब यूसुफ के बारे में जानते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं.
He went through a lot of difficulties in his younger days.
और उसकी युवा के समय में उसने काफी कुछ तकलीफ के द्वारा उसको गुजरना पड़ा.
He was you know sold by his brothers.
और उसके भाइयों ने उसे बेच दिया.
He was falsely accused and sent into prison.
और गलत इल्जाम लगा करके उसको बंदीगृह में डाला गया था.
He suffered a lot.
और बहुत से उसने दुख और क्लेश उसने उठाया.
But in the end, God did not leave him.
और उसकी आखिरी में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा.
So although he went through a lot of difficulties and pain in his life,
और जबकि उसने काफी कुछ क्लेश और तकलीफ उसने उठाया उसके जीवन में,
God did not abandon him.
और परमेश्वर ने उसे नहीं त्यागा.
So when if we turn to Genesis,
और जब हम उत्पत्ति के पुस्तक में हम देख सकते हैं,
chapter 45,
उसका 45.
Verses 4 onwards.
उसके चार से.
So then Joseph said to his brothers, please come.
तब जाकर के यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा,
please come closer to me, and they came closer.
और उसे नजदीक आने के लिए कहा और निकट नजदीक आए.
And he said, I am your brother Joseph, whom you sold into Egypt.
Aur main tumhara bhai Yusuf hu jisko tumne Misr desh mein bech diya.
Now do not be grieved or angry with yourselves because you sold me here, for God sent me before you to preserve life.
Aur yahan pe wo likhta hai ki ab tum log mat pastao aur tumne jo mujhe yahan bech dala tha uske karan tum mat pastao.
So we see here that although Joseph went through a great deal of pain and suffering,
aur yahan pe hum dekhte hain ki Yusuf jo hai bahut se dukh aur klesh se usko guzarna pada,
but he sees that as a situation which God has allowed in his life to bless a lot of people.
aur yahan pe hum dekhte hain ki ye ek aisi paristhiti ko Yusuf dekhta hai ki jisme bahut se log wo aashish pa sakte hain.
Sometimes we have to go through trials so that, you know, that only when we go through a lot of difficulties and trials we understand what others who are going through a similar situation feel.
aur jab hum klesh se hame kabhi kabhi guzarna padta hai jisse hum samajh sakte hain ki kaisa wo dard hai jab dusra log bhi jab usse guzarte hain.
It takes the worst to come to you so that, you know, to bring out the best in you. It takes a worst situation which in your life to bring out the best.
aur bahut hi ek gambhir paristhiti mein leke jata hai jahan pe aapko bahut hi ek accha sthiti mein aapko khada kar deta hai.
We all know this verse in Romans 8:28
aur Romeo ka 8 ka 28 ko hum sab jante hain.
And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose.
aur parmeshwar sab cheez bhalai ke liye karta hai jo jiske dwara sabko parmeshwar ne us karan bulaya hai.
God is able to turn the evil which somebody else does in our life to make it good.
aur jo bhi bura कार्य जो दूसरे लोग हमारे लिए करते हैं परमेश्वर उस चीज को अच्छे में बदल डालता है.
We see in James,
हम याकूब के पुस्तक में हम देखते हैं
chapter 1 verses 2 to 4
उसका पहला अध्याय 2 से लेकर 4.
Consider it all joy my brethren when you encounter various trials, knowing that testing of your faith produces endurance, and let endurance have its perfect result so that you may be perfect and complete, lacking nothing.
यहां पे हम ये यहाँ पे ऐसे ये मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में पढ़ते हो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो. यहाँ पे ऐसा लिखा है और जानकर कि तुम्हारा विश्वास के परख के जाने से धीरज उत्पन्न होता है.
इट इज वेरी इजी टू love brothers and sisters in the church.
aur bahut hi aasan hai ki jo kalisha mein bhai behan se pyar karna
when everything is going good with us,
jab sab kuch theek chalta rehta hai.
but if you have any, you know, if there is any difficulty or you don't like someone,
aur jab kabhi kuch pareshani hota hai, jab kisi ko aap pasand nahi karte ho,
or someone says something to you to hurt you,
aur jab koi kuch bolte hain aapko dukh pahunchane ke liye,
then it is like a test of our faith, as in, are we going to believe, are we going to listen to God, what God tells us?
aur ye ek vishwas ka pariksha hai, kya hum parmeshwar ke upar vishwas karte hain ki parmeshwar kya hame kehna chahta hai.
God tells us to forgive people,
aur parmeshwar kehta hai ki logon ko shama karne ke liye,
not to repay evil with evil,
aur burai ko burai ke sath hame nahi karna hai.
In Romans,
Romeo
chapter 12
uska 12
verses 14 onwards
12 ka 14 se lekar ke
bless those who persecute you, bless and do not curse, rejoice with those who rejoice and weep with those who weep.
yahan pe aisa likha hai apne satane walon ko aashish do aur shraap na do और आनंद करने वालों के साथ आनंद करो.
If there is nobody in our life, or if there is nobody who can who hates us or who troubles us in any way,
अगर हमारे जीवन में ऐसा कोई नहीं है जो हमें घृणा करता है,
और if we don't have any enemies,
और हमारा कोई शत्रु नहीं है,
how would we be able to fulfill this or obey this verse which God has asked?
और कैसे हम इस इस वचन को हम पालन करेंगे जो परमेश्वर हम चाहते हैं?
So, in other words, if God has allowed a situation where there are people who say evil or do evil to you,
और जब परमेश्वर सम्मति देता है कि लोगों को रखता है जो हमारे विरुद्ध कार्य करते हैं या हमारे शत्रु बन जाते हैं,
we have an option here where the God teaches us and tells us that you should never pay back evil for anyone.
और यहाँ पे एक एक वचन रखा है कि हम हम जो है शत्रुओं को बुराई के साथ बदला ना लें.
Romans 12 verse 17.
उसका 17 में लिखा है उसको बुराई के साथ हमें बदला नहीं लेना है.
Never pay back evil to anyone. Respect what is right in the sight of all men.
और जो भी सही है सब मनुष्य के सामने हम उसको सही तरीके से जाने.
And in verse 21 of the same, it is mentioned, do not be overcome by evil, but overcome evil with good.
और यहाँ पे 21 में लिखा है, बुराई से ना हरो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो.
So, when we have difficulties in life, there are two ways to look at a situation.
और जब क्लेश या तकलीफ आता है, उसको दो तरीके से हम उसे देख सकते हैं.
We can either grumble, complain, be bitter.
हम खड़वाड़ के साथ उसके ऊपर गुनगुनाते हुए रह सकते हैं.
Being angry at God.
हम परमेश्वर के ऊपर हम क्रोधित हो सकते हैं.
और we can look at the way as Jesus would have done, you know, when people accused him, people hit him.
और हम देख सकते हैं कि उस तरीके से हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह कैसे उसका उसको समझता, जैसे कि जब लोगों ने उसके ऊपर जब उसके विरुद्ध जब कार्य किया था.
सो वी हैव अ चॉइस दैट वी कैन मेक हियर व्हेन स्पेशली व्हेन वी गो थ्रू डिफिकल्टीज दैट वी कैन ईदर लुक एट इट इन अ वे वेयर एवरीबॉडी एल्स इन द वर्ल्ड लुक्स एट इट विद बाय टेकिंग रिवेंज.
यहाँ पे एक चुनाव हम कर सकते हैं. हम उन उसको इस तरीके से देख सकते हैं जैसे बाकी संसारिक लोग देखते हैं, एक बदलाव के एक आत्मा से भरा हुआ.
और वी कैन लुक एट इन अ गॉडली वे वेयर we trust that this is something which God has allowed and he is able to take care of me through this and he will bless me.
aur ek aise cheez ek aise nazariya se bhi dekh sakte hai ki parmeshwar ne isko anumati diya hai aur parmeshwar use sambhalega aur mujhe sahayata karega.
May God help us.
Parmeshwar hamari sahayata kare.
I praise and thank God for what I've heard.
Main parmeshwar ko dhanyawad deta hu aur stuti deta hu jo maine suna hai uske upar.
Last, I think many Sundays I've been leaving early. I've been missing all of you guys.
कुछ हफ्तों संडे सर रविवार को मैं जल्दी जा रहा था कुछ काम होने के कारण.
So I like to share about my last year's commitments and what God has planned for me the next year.
और जो पिछले साल मैंने जो निर्णय किया उसके बारे में और क्या परमेश्वर ने मेरे लिए नया साल के लिए जो रखा है उस बातों के ऊपर मैं बांटना चाहता हूँ.
So, I made a simple commitment last year in Jan 2018 was to read the Bible completely.
और पिछले साल मैंने ये निर्णय लिया था कि मैं जो 2018 में कि मैं पूरा बाइबल को पूरी तरीके से उसको पढ़ के खत्म करूंगा.
Well, I couldn't finish all of it. I just managed 85%.
और उसको पूरे तरीके से मैं ख़त्म नहीं कर पाया, सिर्फ एक 85% मैंने उसको ख़त्म पढ़ पाया.
Which is a good thing, but I couldn't finish it.
लेकिन ये अच्छा बात है, लेकिन फिर भी मैं उसको ख़त्म नहीं कर पाया.
So it's a challenge for me to complete what I've started.
और ये एक मेरे लिए एक चुनौती की बात है कि जो मैंने शुरुआत किया है उसको खत्म करना है.
And encourage all of you who haven't read it or plan to read it to make a plan and do so in this year.
और मैं यही उत्साहित करूंगा बाकी लोगों से भी जिन्होंने कभी ऐसा एक योजना नहीं बनाया कि आप भी इस तरीके से आप योजना बनाओ और कि वचन पढ़ने का और उसको खत्म करने का.
Well, my last year was up and down and in the month of December I reflected on my life and God showed me two or three verses which I like to share.
और जो पिछले साल जो था बहुत ऊपर और नीचे चीज़ें घटी हुई थी, मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें थी. लेकिन जब मैंने उस चीज़ को मैंने परख कर देखा मैंने साल का आखिरी महीने में दिसंबर के महीने में काफ़ी कुछ वचन मुझे मिला.
एंड आई विश आई कुड आस्क गॉड फर्वेंटली टू शो मी दिस वर्सेस एट द स्टार्ट ऑफ 2018 सो दैट आई कुड बी मोर फर्वेंट एंड desire more of God in my life, but God wanted to show me and teach me a lesson.
और मैं यही चाहता था कि ये वचन को पहले ही परमेश्वर मुझे 2018 में ही मुझे शुरुआत में दिखाए, जिससे मैं और अच्छी तरीके से उस चीज़ को मैं पालन करके मैं चल सकूं।
So when I look back at 2018 and I judged myself।
और जब मैंने 2018 को जब मैंने देखा और मैंने अपने ऊपर जब मैंने न्याय किया,
And I found out many of the times God's hand was not with me, or you know, He was not listening to me and many of my prayers.
और बहुत से समय ऐसा लगा कि परमेश्वर के हाथ मेरे ऊपर नहीं था और काफी कुछ मेरे प्रार्थना के विषय को परमेश्वर नहीं सुन रहा था.
And some of the days He was leading me and you know helping me with different situations.
और कुछ दिनों में ऐसा परमेश्वर दूसरे चीजों या स्थिति में मेरी सहायता कर रहा था.
And I was scanning myself in December and I came across this verse God put in my life in Isaiah 59.
Aur ek vachan parmeshwar ne mujhe dikhaya Isaiah 59 mein.
Isaiah 59 verse 1 and 2.
Uska ek aur do.
Behold, the Lord's hand is not so short that it cannot save, nor is ear so impaired that it cannot hear. But your wickedness has separated you from God and your sins has hidden his face from you so that he does not hear.
यहाँ पे ऐसा लिखा है, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं है, नहीं हो गया है कि उद्धार ना कर सके, ये ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि वो सुन नहीं सकता, परंतु तुम्हारा जो अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है.
So just thinking to myself, is God's hand really short? I mean, can he not save me from certain things? Or
मैं इस बात को मेरे भीतर ही मैं सोच रहा था कि परमेश्वर का सचमुच हाथ इतना छोटा है कि मुझे बचा नहीं सकता है.
Or you know, is he deaf? Can't he hear me?
क्या वो बहरा है कि वो सुन नहीं सकता?
But it says in the second verse that because of my wickedness and my sin, you know, God is keeping himself far away from.
और उसका उत्तर दूसरा वचन में देता है, क्योंकि वो अधर्मों के कारण वो उसका जो हाथ है वो छोटा हो जाता है और वो सुनता नहीं.
And because of my sin, he hides his face and he does not hear me.
और मेरे पाप के कारण वो अपना 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 जो मुंह है उसको छुपाता है.
So this is a lesson God showed me at the end of December, that you know why God's not near me is because of my sin and wickedness.
और ये बात मुझे परमेश्वर ने सिखाया, क्यों मेरे निकट नहीं है, क्योंकि वो मेरे पापों के कारण वो मेरे निकट नहीं है.
And I have humbly confess that you know, yes, it's because of my desires for worldly things that you know has kept me far away from God.
और मैं ये मैं अंगीकार करता हूँ कि मेरे संसारिक जो बातों के ऊपर मेरा ज़्यादा लोभ था, उसके वजह से मैं बढ़ नहीं पाया.
But I was telling Abu Uncle couple of weeks back that you know I have not stayed there. I got up and I want to move forward and I have taken certain steps. And God again has showed me another verse, another promise.
और मैंने इस बात को भाई अबू से भी मैंने बांटा था और मैंने ये कहा कि मैं वो उस स्थिति में नहीं रहा, लेकिन मैं उठ के खड़ा हो गया और मैं आगे बढ़ा और परमेश्वर ने मुझे सहायता किया और एक वायदा भी परमेश्वर ने मुझे दिया है.
In Isaiah 58 verse 8 and 9.
और Isaiah का 58 का 8 और 9 में.
So this is what God is going to do in me in this year, and I believe so.
और जो यही जो बातें जो 8 और 9 में लिखा है कि परमेश्वर मेरे साथ करेगा इस साल में, और मैं इसके ऊपर विश्वास करता हूँ.
Then your light will break out like the dawn, and your healing will quickly come forth. Your righteousness will go before you. The glory of God will be your rear guard.
और यहाँ पे ऐसा लिखा है, तब तेरा प्रकाश पो में प्रकाश जो है प्रकट होगा और चमकेगा और तू सिद्ध चलेगा, सिद्ध जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा.
Then you will call and the Lord will answer. You will cry for help and he will say, "Here I am."
और तब तू पुकारेगा और यहोवा उसे उसका उत्तर देगा और तू उसका उसका परमेश्वर तेरा उत्तर देगा.
If only you take away the myth's yoke of oppression, the finger pointed at scorn and their wicked speech.
यदि तू अंधेरे अंधेरा करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ देता है.
And then the Lord will continue and guide you and satisfy your desire in scorched places, verse 11.
और गहरा में हम लेखते हैं कि परमेश्वर हमें चलाता है लगातार और जब लगातार हमें उठा के चलाता है.
So this is a great promise God gave me that you know that in this new year I want you to first do one thing that is you know remove your wicked speech.
और ये एक वायदा है और मैं ये चाहता हूँ कि जो दुष्ट जो बातें हैं दुष्ट का जो बातें हैं वो निकाल डालूं.
Of judging people and pointing fingers at believers and oppressing them.
दूसरों के ऊपर उंगली उठाना और लोगों के ऊपर निर्णय करना.
And removing the yoke of oppression which I have.
और जो 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 बुराई का जो दबाव है उस चीज को निकाल डालूं.
And God's light will shine through me like the light of God.
परमेश्वर का जो प्रकाश है मेरे ऊपर चमकेगा.
And the healing with restoration will quickly spring forth.
और जो चंगाई और जो परमेश्वर वापस मुझे दृढ़ करेगा.
And the glory of Lord will be your rear guard.
और परमेश्वर का महिमा जो है मेरे ऊपर प्रकट करेगा.
And I believe so and I thank God for this wonderful verses he has given me.
और जो वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ.
And I'm very happy and excited in this new year.
और मैं बहुत ही खुश महसूस करता हूँ और बहुत ही उसके ऊपर मैं बहुत ही excited भी हूँ, आनंद महसूस करता हूँ.
Yeah, so we heard about things about good things and bad things happening to all of us in the last half an hour.
और हमने कुछ अच्छे बातें और जो बुरा बातें जो 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 हुआ उसके बारे में हमने सुना कुछ समय पहले.
I like to share one verse in Ecclesiastic 7.
और
Ecclesiastes 7.
सब उपदेशक साथ में.
Verse 13 and 14. Consider the work of God who can make straight what he has bent. In the day of prosperity, be joyful. In the day of adversity, consider that God has made the one as well as the other, so that man would not find out anything that will be after him. I like to read this from the Message Bible. Take a good look at God's work.
और Message Bible में ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर को जो अच्छे काम के ऊपर हम उसे देखें.
Who can simplify and reduce creation's curves and angles to a plain straight line?
और जो मोड़ और जो मोड़ की जो चीजें हैं उसको वो एकदम सीधा करके देता है.
On a good day, enjoy yourself.
और अच्छे दिन में अपने आनंद मनाना.
On a bad day, examine your conscience.
और बुरा दिनों में अपने विवेक को जांचो और ठीक करना.
God arranges for both kinds of days so that we won't take anything for granted.
और दोनों दिन जो है परमेश्वर ही नियुक्त करता है ताकि हम उस चीज को एकदम हल्का से ना लें.
So all the bad days and good days, I mean God is arranging these days so that we don't take our life for granted.
और अच्छे दिन और बुरे दिन जो है वो परमेश्वर ही लाता है जिससे हम उस चीज को ऐसे ही हल्का से हम ना लें.
Like Linus said, God is teaching us something even in our bad days.
और जैसे भाई ने कहा कि जैसे कि परमेश्वर कुछ हमें सिखाता है बुराई के समय में बुराई दिनों में.
I like to share another verse, another promise God has given me.
और एक वायदा जो परमेश्वर ने दिया है उसको भी मैं पढ़ना चाहता हूँ.
In Job chapter 8.
और अय्यूब के पुस्तक उसका 8.
Job 8 verse 6 and 7.
उसका 8 का 6 और 7.
Job 8 6 and 7. If you are pure and upright, surely now he would rouse himself for you and restore your righteous estate. Though your beginning was insignificant, your end will increase greatly.
और यहाँ पे ऐसा लिखा है और यदि तुम निर्मल और धर्मी रहो तो निश्चय वह तेरे लिए जागता है और तेरी अधर्मिकता का विकास फिर जोग का त्याग कर देता है. चाहे तेरा भाग पहले छोटा हो रहा हो परंतु अंत में तेरा बहुत बढ़ाई होगी.
सो दिस इज अ प्रॉमिस गॉड हैड गिवन जोब. And we know the life of Job, how at the start he used to, he contemplated suicide. He blamed his birth. He cursed God.
और एक वचन जो है वायदा जो परमेश्वर ने अय्यूब के साथ अय्यूब को देता है और जैसे कि पहले शुरुआत में बहुत से चीजें वो करता है अपना इवन जन्म के दिन को वो खोजता है
एंड देन वी नो द लैटर पार्ट ऑफ जॉब हाउ ही सीक गॉड एंड ही फाउंड गॉड
और उसके बाद के वचन को हम जानते हैं कि कैसे वो परमेश्वर को ढूंढा और कैसे चीज उसके जीवन में बदला
सो दीस कपल ऑफ वर्सेस आई टेक इट टू माय हार्ट दैट यू नो Even if my past was, insignificant, okay, it's waste. But my end will increase greatly.
और मैं इस चीजों को इस वचन को मेरे हृदय से लेता हूँ अगर जो पहला जो बीता हुआ चीज है जो अच्छा नहीं था लेकिन आने वाला दिन जो है वो से अच्छा के साथ मैं आगे बढ़ूंगा
I like to share a story before I close.
और एक कहानी बोलना चाहता हूँ बांटना चाहता हूँ समाप्त करने से पहले
This is God's hand or God's work in our lives.
और एक परमेश्वर के हाथ और उसके जो काम जो हमारे जीवन के ऊपर बना रहता है
सो वन डे अ मदर एंड हर किड 5 or 6 इयर्स ओल्ड वाज गोइंग फॉर अ कॉन्सर्ट
और एक माँ और एक बेटा जो है एक कॉन्सर्ट के लिए वो जाते हैं
कीबोर्ड पियानिस्ट पियानो कॉन्सर्ट
कीबोर्ड बजाने के लिए
सो एज दे एंटर दे टुक देयर सीट्स
और जैसे वो लोग गए वो वहां पे अपने कुर्सी को लिया बेटा
जस्ट बिफोर द कॉन्सर्ट द मदर सॉ वन ऑफ हर फ्रेंड्स एंड शी वांटेड ऑफ टू टॉक टू हर
और जैसा उस कॉन्सर्ट का शुरुआत हुआ उसका माँ ने अपने एक दोस्त को देख करके उसके साथ चली गई
बट द चाइल्ड वाज लेफ्ट देयर सो द चाइल्ड गॉट बोर्ड एंड यू नो ही आल्सो स्टार्टेड वांडरिंग ऑफ समवेयर
और वहां पे उसका जो बेटा वहां पे था वो भी देखा कि माँ चली गई है फिर वो भी वहां से उठ करके और किधर गया
And he was just wandering and he saw a door which says no entry, but he entered it.
और वहाँ पे जैसा वो चलता जाता है वहाँ पे एक फाटक को देखता है एक दरवाजा को देखता है जहाँ पे लिखा होता है no entry.
And the mother came back to her seat and she couldn't find her son and she was a little upset or afraid.
और जैसे माँ वापिस आती है अपने बेटा को नहीं पाती है तो बहुत ही व्याकुल हो जाती है.
Okay. And at that moment, the lights dimmed.
और उस टाइम पे जो है जो वहाँ का जो बत्ती जो है एकदम कम हो जाता है, dim हो जाती है.
The focus was on the stage and the curtains moved.
और जो focus जो था वो stage के ऊपर था और वहाँ का जो पर्दा जो है हट गया था.
And then they heard a sound.
और वहाँ पे एक आवाज सुनाई दिया.
Of twinkle twinkle little star and the small boy was playing. The keyboard on the stage in front of everyone, Twinkle Twinkle Little Star.
और ये जो वहाँ पे एक लड़का जो था वो Twinkle Twinkle Little Star बजा रहा था keyboard के ऊपर और वो गाना वहाँ पे चल रहा था.
And when the great pianist stepped, he went up on the stage, he saw this guy, small boy.
और वो जो एक बहुत बड़ा जो पियानो बजाने वाला था जब उसने स्टेज के ऊपर गया तो उसने देखा इस लड़के को वहाँ पे बजाते हुए.
And he was not angry. He went and he told the boy, keep playing, continue.
और फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ पे जाता है और वो गुस्सा नहीं होता और उससे बोलता है कि तू बजाते रहे.
And what the pianist did was he sat behind the boy.
और वो जो महान जो व्यक्ति जो बजाने वाला था वो उस बालक के पीछे बैठ गया.
He put both the hands on the keyboard, one on the bass side and one on the other end.
और उस कीबोर्ड के ऊपर अपने दोनों हाथ को उसके साथ दोनों बाजू में रखा.
And as the guy was playing, the boy was playing. Twinkle Twinkle Little Star. The pianist also gave some sound to it.
और जैसा वो जो बालक जो लड़का जो जो उस गाने को गा रहा था Twinkle Twinkle Little Star. वो जो महान जो पियानो बजाने वाला था वो भी उसको सहायता कर रहा था.
And they transformed that situation into a very like a good music or good sound.
और वो उस समय उस धुन को एक बहुत ही अच्छी तरीके से उन लोगों ने लोगों के सामने बताया और दिखाया.
The audience was mesmerized. They were very happy.
और वहाँ का जो ऑडियंस जो लोग जो सुन रहे थे बहुत ही आनंद और खुश हो गए.
So this is how God works in our lives.
और इस तरीके से ही परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है.
Sometimes we do things on our own, we work things on our own, and try to do small things.
और कभी-कभी कुछ चीजें हम अपने मर्जी के अनुसार हम करते हैं, छोटे-छोटे चीजें करते हैं.
Which is hardly noteworthy. It's nothing. It's nothing.
जो करते कुछ काम का नहीं है.
We try our best, but the results aren't exactly graceful following.
और हम काफी कुछ उसके ऊपर कोशिश करते हैं, लेकिन उसका जो परिणाम उसका कुछ भी नहीं निकलता है.
But you know, when the master's hand comes, when God comes and he interrupts, you know, this bad sound becomes a joyful sound.
लेकिन जब स्वामी का जब हाथ आता है और तब जाकर के जो बुरा जो आवाज है वो अच्छा में बदल जाता है.
And when the hand of the master comes, our life's work, truly can be beautiful.
और जब स्वामी का जब हाथ हमारे ऊपर बढ़ता है, हमारा जो जीवन है बहुत ही अच्छा तरीके से बदल जाता है.
And we may wonder sometimes, taking up certain things, we want to quit or want to give up on things.
और कभी कभी ऐसा होता है कुछ समय के बाद हम सोचते हैं इसे हम छोड़ दें और छोड़ के निकलें.
Give up on life, give up on
जीवन को भी त्याग देते हैं.
But then God is the one who's whispering like, don't give up.
और परमेश्वर जो है धीरे से वो कहता है कि मत छोड़.
Keep playing your twinkle twinkle little star.
और वो जो धुन को गाते रहे, twinkle twinkle little star, वो धुन को गाते रहे.
And feel the love, and God puts his hand around us and helps us and takes us forward.
और उस और परमेश्वर जो है उसका हाथ को हमारे ओर बढ़ाता है और हमें आगे ले चलता है.
Know that his strong hands are playing the concert of your life.
और ये जान लो कि उसका जो जो मजबूत जो हाथ जो है वो हमारे आगे के जीवन को जो है वो बनाता है और वो प्ले करता है, वो धुन को बजाता है.
I like this last line. It says, remember God does not call the equipped.
और जो जो आखिरी भाग जो ऐसा लिखा गया है कि जो पूरी तरीके से तैयार है उनको बुलाता नहीं है.
But he equips the called.
लेकिन जिनको बुलाता है उनको वो तैयार करता है.
Amen. Praise God.
परमेश्वर सहायता करे.
Praise the Lord. मैं जानता हूँ बहुत समय हो गए, ज़्यादा समय नहीं लूँगा. थोड़े ही समय लूँगा. मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, विशेष करके आज को ये वचन जो मिला है हमें बहुत उत्साहपूर्वक था. और बहुत लोगों के दिलों में प्रभु ने काम किया है, बहुत लोगों की इच्छा हुई कि यहाँ पर बात करने के लिए, मैं ऐसा समझता हूँ. मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ आज का जो ये वचन मिला. दूसरा कुरंती 4:8, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते. सच में ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही बड़ा महत्व रखता है ये वचन. और जैसे लिखा गया है कि एक विश्वासी जन विश्वास से जीवित रहेगा, सब लोग जानते हैं ये वचन को, एक विश्वासी जन विश्वास से जीवित रहेगा. तो विश्वास कहाँ से आता है, कोई बताएगा विश्वास कहाँ से आता है? बच्चों का सवाल है. विश्वास परमेश्वर के वचन से आता है, और वचन बाइबल से है, सुनने से आता है. परमेश्वर हमसे बातें करता है पवित्र वचन से. यहाँ पर जो खड़े होकर के भाई जो वचन बांटते हैं उन वचनों के द्वारा बातें करता है. तो हम बहुत सारे मन में हमारे अंदर उथल पुथल होता है, अरे ये वचन मेरे लिए, अरे ये वचन मेरे लिए, लेकिन शायद समय का अभाव या यहाँ पर बोलने की हिम्मत नहीं होती है, उसकी वजह से हम ये नहीं आते. लेकिन बहुत सारे जीवन में प्रभु उत्साह से काम करता है. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आज के इन वचनों के द्वारा ही प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया. पिछले साल में भी प्रभु ने इन यहाँ के जो वचन मुझे सिखाते हैं उन वचनों से मुझे बहुत ही प्रभु ने आशीषित किया है. क्लेश तो आते हैं, परिवार के द्वारा आते हैं, ऑफिस के द्वारा आते हैं, कंपनियों के द्वारा आते हैं. इन दिनों में हमारे आपने सबने सुना है बेस्टी का स्ट्राइक चालू है, तो ये भी एक क्लेश आता है मन के अंदर. सबसे बड़ा क्लेश आता है पेमेंट. पेमेंट लेट हो जाएगा तो मुझे ये नहीं भर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा. तो लेकिन प्रभु ने ये वचन भी दिया है साथ के साथ हमें कि निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते. वचन हमें संभालता है कि अगर हमारे ऊपर क्लेश भी आता है तो परमेश्वर उसमें से निकलने के लिए हमें मार्ग भी देता है, सामर्थ्य भी देता है. तो हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पर ही होना चाहिए. तो पिछले साल में काफ़ी मैंने मेरे ऊपर ऐसा कुछ घर के वजह से कुछ तो ऐसा कर्जा हो गया था, और यहाँ पर भी कर्जे का ही वचन चल रहा था. शायद आपको याद होगा ब्रदर सिखा रहे थे कि हमें ज़्यादा करके बाहरी कर्जे से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा है प्रेम को छोड़ करके किसी बात का और किसी का मतलब कर्जदार मत बनो. ये वचन मुझे बहुत ही अंदर एकदम छुआ था. तो कभी कभी जब घर में कुछ बात होती है तो मैं बोलता हूँ चिंता मत करो, हमें फिर कौन दिखाई देता है. हमें इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि हमें अपना प्रभु तो दिखाई देता है, लेकिन हम सोचते हैं शायद मेरे बैंक दिखाई देता है कि हमारे बैंक में कितने पैसे हैं, या फिर कमी है तो हम उस भाई के पास जाएंगे, उस बहन के पास जाएंगे, वहाँ से पैसे मांगेंगे. हम प्राथमिकता हम मनुष्य पे देते हैं. तो मेरी पत्नी ज़्यादा करके वचन जब छोड़ती है तो एकदम अंदर से चुप जाता है क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर हूँ. वो कहती है श्रापित है वो, वचन से ही, वचन से मारती है तीर और बहुत लगता है फिर वो बोलते श्रापित है वो जो मनुष्य पर भरोसा रखता है. अरे मैं बोला फिर मैं कहाँ जाऊँ तो लेकिन ब्रदर हमें सिखाते हैं कि हमें प्रार्थना करना चाहिए, प्रेम को छोड़कर किसी बात के कर्जदार मत बनो. तो भाई ने भी काफ़ी मतलब वो दिया था, उत्साहपूर्वक वचन दिए थे. तो हमेशा फिर भी मैं प्रार्थना करता कि प्रभु मैं कहाँ जाऊँ, मुझे इस बोझ से तू छुटकारा दे, इस कर्ज से मुझे बचा. क्योंकि हमें पता नहीं कि हमारा कल क्या होएगा, हम नहीं जानते, शायद हम किसी का कर्जा लेकर के ऊपर चले जाएं तो भाई या बहन क्या बोलेगा कि यार मेरे पैसे नहीं दिए, इनके परिवार से कैसे मांगूं. ये मुझको हट होता था. मैं इसी बात से प्रार्थना करता था कि प्रभु मुझे इस वजन से हटा, इस कर्जे से मुझे बचा. सच में परमेश्वर विश्वास योग्य है. बहुत सारे क्लेश हैं, बहुत सारी कमी है मेरे अंदर, बहुत सारे आजू बाजू क्षेत्र से मैं घिरा हुआ हूँ, लेकिन जिस चीज़ से मैंने मांगा था परमेश्वर ने मुझे वहाँ से मुझे छुटकारा दिया. जो भारी एक कर्जा था उस कर्जा से मेरे को ऐसा दिया, वो मार्ग दिया कि मैंने वहाँ का पैसा पूरा पेमेंट किया और मुझे एक अच्छा बोझ से हटाया. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ पिछले लास्ट ईयर में जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया. और आज के इस वचन से जो उत्साह मिला कि मैं वहाँ पर इंतज़ार कर रहा था भाई टाइटस का कि ये कब आए, मैं कब जाके यहाँ पर बोलूँ लेकिन टाइटस भी भाई बहुत भरा हुआ था, पूरा छोड़ दिया अच्छा है भाई प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज सही में उत्साहपूर्वक वचन था. और सुबह में मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैं सोचता हूँ कि ये वचन भी आपको दे ही दूँ मैं भी आज अध्याय आमोस का है, आमोस उसका 8 हम पढ़ेंगे 11 से 12 तक. परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों को सुनने ही की भूख प्यास होगी. मतलब महंगी, यहाँ पर अकाल के लिए महंगी दिया गया है कि ऐसा अकाल डालूंगा मैं. अगर विश्वासी लोग, पहले के इजरायली लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते थे तो परमेश्वर उनको बहुत दुख बहुत तकलीफ देता था. हम आमोस की पुस्तक या और भी पुस्तक पढ़ेंगे तो देखते हैं इजरायली लोगों ने परमेश्वर से बहुत ही विद्रोह किया, लेकिन कई बार उन्होंने माफ़ी मांगा, क्षमा मांगा, तो परमेश्वर उन पर अनुग्रह और दया करता है. आज भी वैसा ही परमेश्वर कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने बहुत सारी बार उनको अकाल भी भेजा, पानी नहीं मिलता था, कई बार अन्य भूख से परेशान हो जाते थे. क्यों? परमेश्वर चाहता था कि मेरे लोग मेरी ओर फिरें, परमेश्वर चाहता है कि मेरे अपने लोग मेरे पास आएं. आज भी परमेश्वर हमारे जीवन में वही काम करना चाहता है. हमारे अंदर बहुत सारी कमी है, बहुत सारी घटी है हमारे अंदर, बहुत सारे पाप में आज भी हम गिर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करता है कि इन चीज़ों से हटो, मेरे पास आओ, इस बोझ से हटो, मेरे पास आओ. परमेश्वर अपना हाथ दोनों पसारे हुए हम लोगों के लिए और पसारता है कि आओ मेरे पास आओ. तो क्या हम उसके पास आने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा, मैं तुम्हें प्यासा नहीं रहने दूंगा, जो कुछ तुम्हें चाहिए मैं सब दूंगा, लेकिन फिर भी अकाल दूंगा. ओ ये तो बहुत बड़ी दुख की बात है. पैसा भी मिलेगा, अन्य धन सब कुछ मिलेगा, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें फिर भी अकाल दूंगा. वो अकाल क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? यहाँ पे लिखा है लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे. परमेश्वर ने यहाँ पर अकाल दे दिया तो अपने पवित्र वचन का. और ये वचन विश्वासियों के लिए एक जीवन है, ये वचन विश्वासियों के लिए एक श्वास है. इसकी भूख और प्यास हमें लगेगी तो हम इस वचन को नहीं पाएंगे. जो आज हमको ये वचन बहुत ही फ्री में मिल रहा है, बैठे बैठे मिल रहा है, रेडियो के द्वारा मिल रहा है, कहीं जगह मिल रहा है हम लोगों को वचन, शायद हम इस वचनों को पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें इसका अकाल दे दूंगा. जो इसको नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा, तुम ढूंढोगे फिर भी परमेश्वर बोलेगा नहीं, परमेश्वर का वचन हमें नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो दिन आने से पहले आज परमेश्वर हमसे बातें करता है। वो चाहता है कि आज आज्ञा का पालन करो, मन फिराओ। हमारे अंदर कमी, मेरे अंदर बहुत कमी है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु मुझसे बातें किया, आप सबसे बातें करता है। हमें आज अपने जीवन को फिरा करके परमेश्वर की ओर आना है, बढ़ना है, हो सके तो यहाँ पर आकर के शेयर करना है। नहीं होता है, हिम्मत नहीं होती है, लेकिन हिम्मत जुटाना है। सब अपने लोग हैं, अपने लोग एक दूसरे को क्षमा करेंगे। कुछ भी अगर मुँह से कुछ निकला तो मैं यही चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है, तो हमें ये वचनों को पूरे हृदय से लेना है। धन्यवाद। यही वचन मुझे सुबह में मिला था और मैंने आपको शेयर किया। आप समय के साथ साथ अभी अभी हम अपने सिरों को झुकाएंगे और मैं लास्ट प्रेयर करता हूँ। प्रभु परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है पिता। हम अपने सिर को झुकाते हैं और आपके सामने अपने आप को दीन और नम्र करते हैं। अपने सारे गुनाहों को याद करते हैं, अपनी सारी कमियों को जांचते हैं पिता, क्योंकि तू पिता हृदय को जांचने वाला और परखने वाला है। हम चाहे कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन तू हमें देखता है। हम अकेले में रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो भी तू हमें देखता है प्रभु। हमारी हर हरकत को तू जानता है, क्योंकि प्रभु हमारा हर एक काम का तू हिसाब लेगा। क्योंकि प्रभु इन दिनों में तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर है, लेकिन जब हम आपके पास आएंगे तो वो अनुग्रह नहीं, वहाँ पर प्रभु एक न्याय के सामने हम खड़े रहेंगे। तो क्या प्रभु हम इस योग्य होंगे कि हम तेरे सामने पूरी निर्भरता से खड़े हो सके? प्रभु आज हम सबकी मदद और सहायता कर प्रभु। इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में तू काम कर प्रभु। हम एक शुद्ध और पवित्र होकर के आपकी ओर फिरें पिता, एक अच्छे मन से आपकी ओर फिरें पिता। एक मन और एक आत्मा हम सबको दे, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबकी सहायता और मदद कर मेरे प्रभु जी। क्योंकि उस महंगी से पहले प्रभु जी हम एक होकर के तेरे चरणों में बने हुए रहे पिता। हम सबकी सहायता मदद कर मेरे प्रभु। प्रभु बहुत धन्यवाद देते हैं आज के इन सुंदर वचनों के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने अपने दास के द्वारा आपने हमसे बातें की पिता। हम सबको प्रभु तो अनुग्रह और दया करना प्रभु। इन वचनों से प्रभु हम सस्ते में नहीं, पूरी तरह से हृदय में जांचते परखते हुए अपने जीवन में हम काम करें मेरे प्रभु। प्रभु आप अनुग्रह करते हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं आज के फिर से पिता कि तूने हमें इतना सिखाया, समझाता है, अच्छे से राहों में लेके चलता है। जैसे तूने कहा ना मैं त्यागूंगा ना ही छोड़ूंगा, जैसे तूने कहा यिर्मयाह 29:11 में कि यहोवा की ये वाणी है जो कल्पना में तेरे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो हानि के लिए नहीं वरन कुशल की है और अंत में तेरी आशा पूरी करूँगा। हाँ प्रभु, हम सबकी आशा पूरी करते उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। आगे का समय भी हम आपके हाथों में रखते हैं पिता। जैसे हम जाएंगे पूरे हृदय में तेरे वचनों को रखते हुए और आपके अनुग्रह में हमेशा बने हुए रहेंगे। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन।